देवियों सज्जनों, आज हम परसों हमने रामनवमी मनाया। अमेरिका में तो सबको सैटरडे और संडे को ही मनाते हैं, मतलब हम लोग इंडियन लोग, तो इसलिए आज होता है। तो फ्राइडे को 15 तारीख को रामनवमी थी। रामनवमी मतलब 9th डे ऑफ चैत्र मास, जो कि राम के वर्ध डे है, राम जिस दिन जन्म हुए थे। हमारे यहाँ जो सेलिब्रेशन की जो डेट होते हैं, वो उस डेट के साथ नाम जुड़ जाता है। अंग्रेजी पढ़ने वाले को वो थोड़े समझ में नहीं आता है, जो जैसे हम जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, तो अष्टमी मतलब वो डेट है, आठवीं तिथि है, 8th ऑफ भाद्र मास कृष्ण पक्ष। इसी तरह रामनवमी मतलब राम का बर्थडे 9th है, तो वो 9th और राम को जोड़कर हम बोलते हैं। जैसे विजयादशमी, आप दशहरा मनाते हो, तो विजयादशमी फेस्टिवल जो कि 10th तारीख 10 तारीख को पड़ता है इंडियन कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में। तो ये जो 8वीं 9वीं 10वीं ये भारतीय व हिंदू कैलेंडर के डेट होते हैं, तिथि होते हैं। तो राम का जन्म चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में हुई थी, और जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो राम नवमी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही जब आप जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी मनाते हो, वो अष्टमी मतलब वो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के 8th तारीख को पैदा हुए थे, इसीलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। चैत्र मास करीब करीब मार्च और अप्रैल के बीच में पड़ता है। हमारे नए साल का पहला वर्ष मास भी है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, ये नया साल भी है और पहला मास भी है। इसी चैत्र मास में ही प्रतिपदा के दिन, नए साल के दिन राम का राज्याभिषेक भी हुआ था, उनका कोरोनेशन भी उसी दिन हुआ था। और चैत्र मास के 9 तारीख को शुक्ल पक्ष के उनका जन्म हुआ था। आज इस शुभ अवसर पर हम सब उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे पास राम का जो चरित्र जिसने पहुंचाया, वो महर्षि वाल्मीकि है। ये इसीलिए बताना पड़ता है, जैसे कि मैं बार बार हमेशा एक चीज कहता हूं, दुनिया में शायद हम ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने बारे में जितना झूठ बोलता है, मानता है, उतना प्राउड फील करता है। अपनी सच को जितना इग्नोर करता है ये कम्युनिटी, उतना प्राउड फील करता है। अब राम को सेलिब्रेट करते हैं, पर रामायण के नाम पर हम उन कथा कविताओं को तो सेलिब्रेट करते हैं, पर असली रामायण को ना कभी नाम लेते हैं, ना कभी डिस्कस करते हैं। ये हमारी फितरत है, ये हमारी आदत पड़ चुकी है। तो वाल्मीकि रामायण के जगह आजकल 200 साल पहले, 400 साल पहले हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, अवधी में लिखे गए कवियों की कविताएं पॉपुलर होती जा रही हैं, लोग पॉपुलर करते जा रहे हैं, और असली रामायण गायब होते जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है, रामायण का लेखक वाल्मीकि है, न कि और कोई। बाकी तो हजारों कवि होते हैं, पोएट्स होते हैं, जो किसी ना किसी विषय पर काव्य लिखते हैं, उसमें उनके इमेजिनेशन होता है, एग्जेजरेशन होता है, उसमें एस्थेटिक पॉइंट भी होता है, और उसको फिर हम जब सेलिब्रेट करते हैं या हम उसको जब सच मानते हैं, यही समस्या होती है। महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण लिखने से पहले ऋषि थे। वैसे तो हमारे यहां जिसने जो कुछ भी देखा, जाना, सुना, ज्यादातर ऋषि लोग थे। महर्षि वाल्मीकि के अंदर लिखने की प्रतिभा थी, टैलेंट थी लिखने की, तो उनको कुछ लिखना था। तो एक दिन महर्षि नारद उनके आश्रम में आए। महर्षि नारद ने पूछा, आप कुछ लिखते क्यों नहीं हो? तो वाल्मीकि ने कहा कि तो मैं लिखूं, पर मुझे कोई कैरेक्टर चाहिए। जैसे आजकल राइटर लोग लिखने के लिए एक प्लॉट ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, किसी पर लिखें। तो वाल्मीकि को एक प्लॉट चाहिए था, एक कोई कैरेक्टर चाहिए था जिस पर वो लिखें, पर उनकी नजर में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था जिस पर वो कलम चलाएं। शास्त्र को छोड़कर पहली बार कोई कविता लिखे, और कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो उनके नजर में नहीं था। तो उसने नारद जी से पूछा, आप तो घूमते रहते हो, आप ही बताओ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हु कैन पॉसिबल बी फुल ऑफ वर्च्यूज इन दिस वर्ल्ड एट प्रेजेंट, वो अभी जिंदा हो, इंसान हो, इस धरती पर रहता हो, इंसान हो, जिंदा हो। मैं किसी मरे हुए आदमी पर लिखना नहीं चाहता हूं, मैं किसी अति मानव पर लिखना नहीं चाहता हूं, किसी सुपर ह्यूमन पर नहीं लिखना चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा ह्यूमन बींग बताओ जो जिंदा हो, फुल ऑफ वर्च्यूज हो, और जिसके पास शक्ति हो, ज्ञान हो, ताकत हो, बहुत सारी चीजें उसने पूछा। कौन अस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च, जो धर्म को समझता हो, कृतज्ञश्च जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड की सेंस हो, सत्यवाक्यो दृढ़ व्रत जो हमेशा सच बोलता हो, जो प्रॉमिस करता हो उस पर वो खड़ा उतरता हो, चारित्रेण च को युक्त जिसका कैरेक्टर बिल्कुल क्रिस्टल हो, क्लियर हो, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई स्टिंक ना हो, किसी भी तरह का कोई उस पर कोई ब्लेम ना कर पाता हो, सर्वभूतेषु को हितः और जो सभी प्राणियों के प्रति भला चाहता हो, विद्वान का समर्थश्च ज्ञानी भी हो और युद्धा भी हो, कश्चैक का प्रिय दर्शन और देखने में बड़ा सुंदर भी हो, धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचिरवश्य समाधिवान, धर्म को जानता हो और पालता हो, सत्य जिसकी शक्ति हो, प्राणियों के प्रजाओं के हित करता हो, बहुत फेम यशस्वी हो, ज्ञान से भरा हुआ हो, पवित्र हो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना जानता हो, वगैरह वगैरह। उन्होंने वाल्मीकि ने तो लंबी झड़ी लगा दी विशेषणों की, और शर्त यह है वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होना चाहिए, कोई मरा हुआ व्यक्ति, हिस्ट्री का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई माइथोलॉजिकल पर्सन नहीं होना चाहिए, मुझे कोई आदमी चाहिए जो कि इसी जिंदा हो, इसी धरती पर रहता हो, ये सारी क्वालिटी जो उसमें हो। नारद बड़े डिलेमा में पड़े, भले ऐसे कैरेक्टर आप बता रहे हो, जितने गुण बता रहे हो वो तो अलग अलग व्यक्ति में मिल सकता है, ये सारे क्वालिटीज अलग अलग व्यक्ति में, एक किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में चार है, किसी में पांच है, पर ये सारे क्वालिटी एक ही आदमी में दिखे बहुत मुश्किल होता है। पर मेरे नॉलेज में एक आदमी है, मैं आपको बता सकता हूं, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा, जो तुमने गुण बताए ना, जो क्वालिटीज गिनाए वो बहुत रेयर होते हैं, मुनि वक्षाम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नर, पर तब भी मेरे नजर में एक आदमी है, मैं आपको उसके बारे में बोलना चाहता हूं, इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामु नाम जनहि श्रुत, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ एक व्यक्ति है, पब्लिक में उसको राम के नाम से बड़ा फेमस है, नियतात्मा महावीर्यो बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड है, बहुत वीर है, दीतिमान धृतिमान वशी, वो चमक वाला है, तेजस्वी है, ज्ञानी है, जितने आप बता रहे हो मैं नहीं कह सकता कि सारे गुण उसमें फिट बैठते हैं, पर मोस्ट ऑफ जो आपने क्वालिटीज बताया वो उसमें मिल सकता है, लोग उसको राम के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि ने ये सारे कैरेक्टर सुना, समझा, बाद में खुद खोजबीन किया, तब राम की ज्यादातर जीवन का अंत था, लंका का युद्ध पूरा हो चुका था, वो शासन कर रहे थे तब बड़े शांति से, ये तब की घटना है जब वाल्मीकि को नारद ने बताया, वाल्मीकि ने अपने सोर से इन चीजों को प्रूफ करने की कोशिश की, सच है कि नहीं, एविडेंस ढूंढा। जब उनको पता चला सचमुच ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, कौन कैसा है क्या है। जब पता चला तो उन्होंने अपने काव्य को, अपने टैलेंट को, प्रतिभा को उन्हीं के ऊपर लिखा, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर जीवन में कभी रामायण पढ़ने को मन करे, अगर आपको लगता है कि आप राम के भक्त हैं, नहीं भी हैं, भक्त बनना चाहते हैं, वाल्मीकि के रामायण जरूर पढ़िए। हमारे लाइब्रेरी में भी है और कहीं भी आपको मिल जाएगा। देवियों सज्जनों, सच्चे किताबों को पढ़िए, झूठ के किताब पढ़ के खुद झूठ को एक्सेप्ट करके दुनिया को झूठ मनाने के लिए जबरदस्ती मत करिएगा। ये बड़ी समस्या है। लोग मेरे से भी पूछते हैं कि आप ये बोलते हो, वो बोलते हो, मतलब क्योंकि हम पांच पीढ़ी से झूठ पढ़ते हैं, झूठ को मानते हैं। कोई कुछ बता दे तो उनको लगता है आप तो हमारे फेथ पर शंका करते हो। कभी सही किताबों को पढ़ा करें। महाभारत का नाम लेते हो, कभी महाभारत पढ़ते नहीं हो, सुनी सुनाई बातों पर चलते हो। रामायण के नाम पर रामचरितमानस में गंगा पार कर जाते हो। यही तो हमारी गड़बड़ी है। अगर आप माँ बाप के साथ भी यही करने लगो, हिस्ट्री के साथ भी यही करने लगो, तो दुनिया तो बचेगी नहीं। देवियों सज्जनों, मन करे तो राम को समझना है, वाल्मीकि रामायण को जरूर पढ़िए। हमारे मुनि ऋषि एक सुंदर बात कहा करते थे कि अगर कभी आपको पता चले, समझ में नहीं आए दुनिया में कोई बात कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कैसे जीना है, तो हम लोग किताबें पढ़ते हैं, अपने बड़े बूढ़ों से डिस्कस करते हैं, या कोई ऐसे बुक्स पढ़ते हैं जहां हमें कोई राह दिखे, कोई रास्ता दिखे, कोई हमारे डिलेमा का सोल्यूशन मिले, या बुक्स पढ़ते हैं, या हम अपने बच्चों को खुद भी बायोग्राफी पढ़ते हैं बड़े बड़े महापुरुषों की, जिनसे हमें समझ में आए कि ऐसी सिचुएशन आए तो उसका सोल्यूशन क्या निकले। तो यही स्थिति यहां भी है। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़े हो तो आपकी बुद्धि तेज होगी, आपको समझ अच्छा बनेगा, आपको डिस्क्रिमिनेट करने में आसान होगा। डिस्क्रिमिनेट किसमें करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या मानना है क्या नहीं मानना, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। शास्त्र पढ़ो। बोले अगर तुम्हारे लिए शास्त्र मुश्किल हो जाए समझना, तो बड़े लोगों की जीवनी पढ़ो। यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये गीता का श्लोक है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं महापुरुष लोग, जो बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, आम आदमी उसी रास्ते पर चलता है, वो जैसा कर जाता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो शास्त्र जब समझ में ना आए तो बड़े लोगों की जीवनी पढ़ना चाहिए। जो हमारे आदर्श पुरुष होते हैं, आदर्श महिलाएं होती हैं, उनके जीवन पढ़नी चाहिए, उससे भी रास्ता दिखता है। इसी तरह रामायण उस आदर्श पुरुष के चरित्र है जिसको पढ़ने पर आपको हमें समझ में आता है। जो लाइफ में बहुत सारे संधिकाल है, बहुत सारे डिलेमा होती है, उस समय डील करने के लिए हमें कैसा रास्ता चुनना चाहिए। कौशल्य और युधिष्ठिर के, दशरथ के पुत्र राम, उनके और तीन भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, वो भी गुरुकुल जाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जा गए थे प्राचीन काल में, लोग गुरुकुल जाते थे, कृष्ण संदीपनी के आश्रम में पढ़े, राम लक्ष्मण वगैरह गुरुकुल में पढ़े, बाकी जो भी थोड़ा कमी रह गई थी लड़ाई वगैरह की से ट्रेनिंग में, विश्वामित्र ने उनको ट्रेंड किया, वो भी गुरुकुल जाते थे, पढ़ाई करते थे। राम के रामायण पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। राम और प्रतिदिन यज्ञ करते थे, सुबह शाम संध्या करते थे, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते थे। जंगल में इतनी मुश्किलों के बावजूद पत्नी को किसी ने उठा करके ले गया, जिंदगी भर 14 साल तक जंगल से इधर उधर भटकते रहे, दुनिया भर की स्ट्रेटेजी करे, दुख सहे, उसके बावजूद भी वो कभी नहीं भूलते थे सुबह और शाम ईश्वर को प्रार्थना करने में, यज्ञ करने में, संध्या करने में, जो जैसा माहौल मिला वैसा उसी परिस्थिति में ईश्वर को बुलाने में, संध्या करने में। हमारी समस्या है कि हम सिर्फ अपने भगवानों को, महापुरुषों को फल और पुष्प और नैवेद्य अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में कुछ सीखना नहीं चाहते, इसीलिए हम उनको इतने बड़ा बना देते हैं कि उनसे कुछ सीखने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी में एक बार तो, दिन में एक बार तो भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं है, पर भगवानों के नाम पर खून बहाने के लिए रोज तैयार हो जाते हैं। देखियो सज्जनों, जब आप अपने आदर्श लोगों के जीवन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है जीवन में ईश्वर की स्तुति भक्ति कितनी जरूरी है। राम हो या कृष्ण हो, जिनको आप लोग महान मानते हैं, उनके जीवन को भी पढ़िए, वो भी अपनी पूरी जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताते थे। राम की विशेषता यही है, रामायण में, पूरे वाल्मीकि रामायण में जिनको चमत्कारों में मजा आता है, चमत्कार के बिना किसी को भगवान मानना चाहते नहीं है। मैजिशियन भी बोल ले कि मैं भगवान हूं, मैं सफेद नोट को, सफेद कागज को नोट में बनाता हूं, उसके भी लाखों करोड़ों भक्त बन जाएंगे, भगवान करके पूजने लगेंगे। तथाकथित चमत्कार प्रिय रिलीजियस लोगों को वाल्मीकि रामायण में आपको राम का एक भी चमत्कार नहीं दिखेगा। आपके हमारे तरह एक इंसान राजपुत्र जो राजा का बेटा होकर के पढ़ लिख करके नॉर्मली जैसे एक आम राजपुत्र होता है, प्रिंस होता है, वैसे ही पले बड़े हैं। जीवन में जो छोटी छोटी से बड़ी बड़ी समस्याएं, छोटी या बड़ी समस्याएं आई, उनको कितने मुश्किल से, दुख से, सुख से झेला है, कोई चमत्कार मिरेकल कहीं नहीं किया। कोई मिरेकल का आपको वाल्मीकि रामायण में कोई रेफरेंस ही नहीं मिलेगा कि सीता को रावण उड़ा लिया और उसने धुंधला बना करके राम को मार डाला। नहीं, उसने वो स्ट्रैटेजी अपनाई, लोगों को जोड़ा, इकट्ठा किया, जैसे कोई भी आदमी कर सकता है, अपनी जो समझ है, सोच है, उसको यूज किया। एक महान पुरुष के जो लक्षण हो सकते हैं, एक लीडर का जो लक्षण हो सकता है, और नारद और वाल्मीकि की भाषा में एक महान पुरुष के जो लक्षण होते हैं, सब आपको राम में मिलता है। अगर जीवन में कुछ सीखना है तो राम का चरित्र, उसका हर आचरण, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, उसके मां बाप के साथ व्यवहार, उसके अपने भाइयों के साथ व्यवहार, उसके अपने प्रजाओं के साथ व्यवहार, उसके अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार, उसके अपने मित्रों के साथ व्यवहार, ऐसा कोई व्यवहार आपको नहीं मिलेगा जो आपको सीखने लायक नहीं है। इसीलिए हजारों सालों से भारतीय परंपरा में राम के साथ एक एडजेक्टिव जुड़ गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा क्या है? जो आइडियलिज्म है, जो रूल्स है, जो नियम है, उसने जीवन में कभी भी उस मोरलिटी को एक इंच भर के लिए आगे बढ़ने की, क्रश करने की कोशिश नहीं की। अपनी जो भी उन दिनों की जैसा भी धार्मिक व्यवस्था थी, रूल रेगुलेशन था, उन सब नियमों के अंदर रहते हुए, उन सामाजिक सोशल सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने जीवन के संघर्ष को किया, और पूरी मर्यादा को, मर्यादा मतलब जो लिमिटेशन को, जो सोशल लिमिटेशन है, जो फैमिली लिमिटेशन है, जो मोरलिटी का लिमिटेशन है, रिलेशनशिप की जो लिमिटेशन है, उसके अंदर रहते हुए जो अपने आप को जिया, वो हमारे लिए सीखने लायक होता है। इसीलिए हमारे वाल्मीकि कहते हैं कि रामो ही विग्रहवान धर्मः। अगर तुम्हें वो, आप कह सकते हैं कि ही इज ए पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ धर्म। धर्म क्या है पढ़ के समझ लो, अगर पढ़ नहीं सकते हो राम के कैरेक्टर को समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा धर्म होता क्या है। मैं अगर लाइफ में धर्म को इंप्लीमेंट करूं, मैं अपने जीवन में धार्मिक बनना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? अगर आपको ऐसी कोई शंका है, डाउट है, समझना है, तो कहते हैं कि राम अपने आप में धर्म का मानो पुरुष था, धर्म का एक अवतार था, धर्म का मानो पर्सनिफाइड फॉर्म था, मानो धर्म राम बन के था। जब वो कैकेयी को, कैकेयी राम से पूछती है कि आपको वनवास जाना है कल सुबह, दशरथ ने मुझे, तुम्हारे पापा ने मेरे से प्रॉमिस किया था ये तीन वर देने के लिए, कल तुम्हारा सुबह तुम्हारा अभिषेक राजा बनने का, युवराज बनने का फेस्टिवल था है, पर कल सुबह तुम सूर्योदय के साथ साथ ये अयोध्या राजधानी छोड़ोगे, जंगल में रहोगे, कपड़े छोड़ोगे, जो रॉयल ड्रेस है उसको छोड़ोगे, रॉयल खाना छोड़ोगे, एक दो दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अयोध्या छोड़ के चले जाओ, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक्साइलमेंट, सिर्फ निर्वासन नहीं है, तुम्हें 14 साल तक किसी भी राजकीय भोग करना भी नहीं है, तुम्हें जंगल में रहना है, आम लोगों के कपड़े पहनने हैं, खाना जंगल का खाना खाना है। इन सबको कहने के बाद राम का जवाब होता है, रामोस्मी सर्वम सहे, मैं राम हूं, सब कुछ सहने को तैयार हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं राजा हूं तो मैं गरीब की तरह कैसे जीऊंगा, मैं रॉयल फैमिली में पला बड़ा हूं, मैं जंगल में कैसा रहूंगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं सहने की मेरे अंदर क्षमता है, मैं उसे सह सकता हूं। वो किसी भी डिवोटी की तरह, भक्त के तरह, जो ईश्वर के लिए समर्पित होते हैं उसी की तरह ईश्वर भक्त थे। अपने जीवन के ऐसा कोई दिन उन्होंने नहीं बिताया, कितने भी मुश्किल में रहे, आप कल्पना करें कि आपकी पत्नी या पति या पत्नी को कोई किडनैप करके ले जाए और आपको पता नहीं किस हालत में हो, क्या हो, कितनी बड़ी स्ट्रेस में, कितने टेंशन में रहेंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ी, इतने बड़े दुख में भी वो सुबह शाम रोज यज्ञ करते थे। वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रतिदिन सुबह उठ के और शाम को वो यज्ञ करते थे, संध्या करते थे, ईश्वर भक्ति करते थे। एक दिन भी उन्होंने अपने ईश्वर भक्ति में कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई ब्लेम नहीं किया किसी को, वो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रख के चलते थे। जब हम अपने आदर्श लोगों को आदर्श मानते हैं, जिनको उनके आचरणों से अगर दो चार बूंद हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। जब उनको लोग समझाते हैं कि आप कैकेयी की बात मत सुनिए, ये आपका राइट है कि आप युवराज बनेंगे, क्राउन प्रिंस बनेंगे, और कल सुबह आपका अभिषेक होना है, आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस किया था, आपने पापा ने आपको नहीं कहा कि, पिताजी ने नहीं कहा कि आप वनवास जाओ, वो तो आपकी सौतेली मां ने कहा, स्टेप मदर ने कहा, आप उसको मत सुनिए। तो राम कहते हैं, रामो द्वीर नभाषते, मैं राम हूं, मैं किसी चीज को दोबारा नहीं बोलता हूं, अगर मैंने एक बार बोला, मैंने अगर अपनी मां को कैकेयी को यह वचन दिया कि नहीं मैं आप पापा के पिताजी के द्वारा दिए गए वचन को मैं निभाऊंगा तो मैं निभाऊंगा, उस पर मैं दोबारा सोचता नहीं हूं, अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं ये करूंगा फिर दोबारा उस पर नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं राम हूं। देवियों सज्जनों, महान लोगों से सीखने की जरूरत है, अगर आप महान चरित्रों से कुछ सीखते हैं तो आपका जीवन धन्य होता है, उनको पूजने से कुछ नहीं मिलता है सिवाय मंदिर के कुछ लड्डू और कुछ मिठाई से। जीवन में अगर कुछ आ जाए, चरित्र में थोड़ा बदलाव आ जाए तो आप भी महान से कम नहीं बनेंगे। और मर्यादा का अपनी इतना कठोर अनुपालन है, रावण शत्रु है, रावण को युद्ध में हराया, रावण अभी मरने की स्टेज पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर में बाण, बहुत सारे बाण फंसे हुए हैं, अभी जीवन सांस जाने की स्थिति में है। राम लक्ष्मण विभीषण राम के, रावण के पास पहुंचते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप विदग्ध हो, वेदों को जानने वाला राम रावण से कहते हैं। आप ब्राह्मण हो, बड़े यज्ञ तप आदि करने वाले व्यक्ति हो, आपने जीवन में कुछ गलत काम किए, मेरी पत्नी को आपने हड़पा, तो मुझे अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए मुझे आपसे लड़ना पड़ा और मैं आपको हरा चुका हूं, मैं अपनी पत्नी लेकर जाऊंगा, पर मैं आपकी ज्ञान की नीचा नहीं कर सकता हूं, आप मेरे से बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मरने से पहले कुछ उपदेश तो मुझे दे जाइए, क्योंकि मैं आपकी तरह इतने बड़ा शास्त्रों को नहीं जानता हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण है, ज्ञानी है, वेद के विद्वान है, रावण जात में ब्राह्मण था और बहुत बड़े वेदों के शास्त्रों के विद्वान था, इसीलिए ध्यान रखिएगा आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे नहीं फर्क पड़ता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर अलग तरीका अलग चीज होता है, उसको बनानी पड़ती है, आप कितनी किताबें पढ़े हैं, कितने ज्ञानी हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, पर मुझे आपसे सीखना है। राम रावण से ज्ञान लेते हैं और विभीषण रावण जब मर जाता है तो विभीषण से कहते हैं पूरे सत्कार के साथ विथ फुल रेस्पेक्ट रावण का अंतिम संस्कार किया जाए। विभीषण कहते हैं वो आपका शत्रु है, वो राक्षस है, दुनिया में कितना सारा पाप फैलाया, आपके साथ क्या क्या छल कपट किया, कितने आपको परेशान किया, और आप कहते हो उसकी पूरी सम्मान के साथ अंत्येष्टि संस्कार हो। राम कहते हैं शत्रु जिंदा जब तक है तब तक शत्रु होता है, मरने के बाद सब एक ही होते हैं, शत्रु कौन मित्र कौन, उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जिस सम्मान का हकदार है, आप उसको पूरी रॉयल डिग्निटी के साथ उसका अंतिम संस्कार करिए। विभीषण होकर भी उसको समझ नहीं आता है क्योंकि आम इंसान की तरह बात करता है, पर ये राम की वो मर्यादा को पालन करने की क्षमता है कि विपरीत परिस्थितियों में अपोजिट सिचुएशन में भी वो अपनी मान अपनी बुद्धि को अपनी विवेक को कभी भी डगमगाने नहीं देते, ये उनकी मर्यादा का चिन्ह है। जीवन भर एक पत्नी व्रत रहे, जबकि उन दिनों के आज तक भी जितने भी राजे महाराजे हुए हैं, और इवन जिसके अंदर भी शक्ति आ जाती है वो एक से अधिक पत्नियां रखने की व्यवस्था होती है, वो इवन ब्रिटिश आने तक भी जो हमारे राजा महाराजे थे वो किसी के पांच सातों से कम बीवियां नहीं होते थे, ऑफिशियली तो दो चार पांच बीवी होते ही थे और अनऑफिशियली तो पता नहीं सैकड़ों बीवियां रखते थे पर जिनको वो बीवी के अधिकार नहीं देते थे। राम के पिताजी के भी तीन तीन ऑफिशियल बीवियां थे, वैसे 300 से ज्यादा करीब उनके और भी पत्नियां थी, तो राम पूरी जीवन भर एक ही पत्नी व्रत पालन किया। जब सीता नहीं थी जंगल में तो राजसीय यज्ञ करने की आई, और यज्ञ में नियम है गृहस्थ व्यक्ति अकेला यज्ञ नहीं कर सकता, पत्नी के साथ ही करना पड़ेगा, पत्नी को पति के साथ ही बैठना पड़ता है, ये नियम है, यज्ञ में कपल को बैठना ही पड़ता है, दोनों साथ यज्ञ कर सकते हैं, इसीलिए पत्नी को सहधर्मिणी पति को सहधर्मी कहा जाता है, धर्म को जीवन में किए जाने वाले हर कार कर्म को वो मिलके करेंगे, अकेले नहीं करने का अधिकार है, ना पुरुष को है ना स्त्री को है। तो ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ आप कैसे करेंगे, आपकी पत्नी नहीं है तो आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी या सीता को बुलानी पड़ेगी। राम ने कहा नहीं, मेरी जीवन में एक ही पत्नी है और एक ही रहेगी, तो उपाय क्या है, तो सीता पास में नहीं है, दूसरी शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इसीलिए नहीं कि वो आपके हमारे तरह आज के जमाने का मिडिल क्लास आदमी था, इसीलिए नहीं है, उनको 400 शादियां करने का हक था, उनके बाप ने कर रखा था, इसीलिए कि वो उनकी ऐसी मानसिकता है, ऐसा सोच था, वो सत्य को पालन करने की जिद्दी थी। तो फिर सल्यूशन निकला कि एक सोने के मूर्ति बनाए जाए सीता की, उसको अपने बगल में रखा जाए, ऋषि को स्त्री मान के हवन किया जाए। राम को वो मंजूर था, पर यज्ञ के नाम पर भी दूसरी शादी करने को मंजूर नहीं थे। इसी तरह उनकी भ्रातृ प्रेम आप जानते हैं, भाई का प्रेम राम अयोध्या से जंगल जा चुके थे। अयोध्या के बाहर कुटिया में रहते हैं और भरत को समाचार जाता है, भरत वापस आता है, पता लगता है भरत जब राम को वनवास हुआ, भरत अपने मामा के घर थे, उनको बुलाया गया। जब भरत और शत्रुघ्न आए तो पता चला, सुना ये घटनाएं घटी, उनकी मां ने ऐसी ऐसी काम की। वो बोले, नहीं, मैं राम को व भाई को वापस लेकर आऊंगा, ये उन्हीं का राइट है, उन्हीं का अधिकार है राजा बनने का। भरत राम के पास पहुंचते हैं पैदल चल करके, सेनाओं के साथ, मंत्रियों के साथ, पुरोहितों के साथ, माताओं के साथ, सबको साथ लेकर पहुंचते हैं। राम को समझाते हैं लक्ष्मण, जब पहुंचते हैं तो लक्ष्मण दूर से देखता है कि जो धूल उड़ने लगे घोड़ों के, रथों के, तो लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ के देखा, दूर से एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। वो सेना आक्रमण करने के लिए नहीं थी, वो तो राम के सामने सरेंडर करने के लिए थी। लक्ष्मण ने कहा कि भरत मारने के लिए आ रहा है, उसकी मां ने तो भगा दिया, अब भरत को लग रहा होगा कि वो जिंदा रहेंगे, वापस कब्जा कर लेंगे, तो शायद हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो भाई मुझे आप बस आदेश दीजिए, मैं इनको अभी यही साफ करता हूं। राम ने कहा, धैर्य रखो, भरत ऐसा नहीं हो सकता, वो हो सकता है मिलने आता हो। भरत आए, चरणों में गिरे, भाई के सामने गिड़गिड़ाए कि आप वापस चलो, ये राज्य आपका है, किसी भी तरीके से ये ना मेरा, ना लक्ष्मण, ना शत्रुघ्न, ना किसी का हो सकता है। आप हर तरीके से, प्रजा भी आपको ही पसंद करती है, बड़ा बेटा होने के नाते राइट भी आपको ही है, गुण अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति है राजा बनने की। मेरा किसी भी एंगल से राजा बनने का कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप ही बनिए, हम आपके सेवक बनने वाले हैं। राम को समझाया। राम कहते हैं, भरत मैं तो जीवन में कभी दोबारा कोई चीज बोलता नहीं हूं, रामो दूर नभाषते, मैंने अगर एक बार प्रॉमिस किया है तो वो तो मैं निभा कर रहूंगा, 14 साल से पहले मैं अयोध्या वापस भी नहीं जाऊंगा, राजा तो बनना दूर की बात है। भरत राम को कोसते हैं, उनकी दुनिया भर के आरोप लगाते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भागते हो, राज्य आपको बनना है। राम भरत को कोसते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हें ही राजा बनना है, जनता की सेवा करनी है, ये तुम्हारा ये राइट है। एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि राजा बनने का राइट किसका है, एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। दिव्य सज्जना, हमारे आर्य समाज में एक बड़े विद्वान हुए, उनका नाम है रामचंद्र दहलवी। एक बड़े अपने जीवन के एक बड़े रियल स्टोरी वो सुनाया करते थे, एक सही घटना को और बड़े दिल को छूने वाली घटना को सुनाया करते थे। एक बार वो दिल्ली से बनारस की तरफ जा रहे थे, यूपी में कहीं, रास्ते में एक व्यक्ति गाड़ी में चढ़ा, वो स्लीपर क्लास में ऊपर की सीट में दहलवी जी सोए हुए थे, नीचे जो आदमी बैठा था वो रात को सुबह सुबह जब वो ट्रेन में सुबह सुबह उठा तो उठ के पूरी हनुमान चालीसा, राम रामायण की, रामचरित मानस की दोहा गा रहा था और बड़े मीठे स्वर में, बड़े सुंदर, कान को बड़े अच्छे लग रहे थे, सुन रहा था और रास्ते भर वो गा करके चलता था। जब इलाहाबाद स्टेशन आया तो वो उतरने लगा तो दहलवी जी ने पूछा कि आप कहां तक जाओगे? बोले मैं इलाहाबाद उतरूंगा। बोले क्यों? आप बड़े इतने सुंदर भजन गाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप इतने रामचरित मानस के दोहे गाते हैं, इलाहाबाद आपका घर है। बोले नहीं, इलाहाबाद मेरा घर नहीं है, मैं तो आजकल दिल्ली में ही रहता हूं, इलाहाबाद में मेरा केस चलता है। क्या केस है? बोले मेरे भाई के साथ केस चलता है अपनी जमीन जायदाद के लिए। बोले कितने साल से चलता है? बोले 9-10 साल से केस चलता है, साल में मुझे दर्जनों बार तारीख के जो कोर्ट की जो डेट पड़ता है उसमें आना पड़ता है। दहलवी जी ने मुस्कुरा कर बोला, ये जिंदगी भर रामचरितमानस की दोहा पढ़ते रहते हो और भाई के साथ 10 साल से केस लगा रखे हो जमीन जायदाद के लिए, उसी राम का नाम लेते हो जहां राम अपने भाई के साथ इस बात के लिए लड़ते थे कि राजा कौन बनेगा। वो कहता था तुम्हारा है राज्य, वो कहता था तुम्हारा है राज्य, और उसी राम के जिंदगी भर गुण गाते गाते भाई के साथ लड़ते रहते हो, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। देवी सज्जनों, जब आपके आदर्श पुरुष आपके पूजा के लायक हो जाए तो हम सब यही करते हैं, मंदिर में लड्डू खाते हैं, घर में जाकर लड़ाई करते हैं, बाजार में बेईमानी करते हैं, फिर भगवान की पूजा करते हैं लड्डू खाने के लिए। राम आदर्श बन जाए आपके मेरे तो हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। एक दूसरे को क्रेडिट देने के लिए लड़ाई करेंगे, एक दूसरे से क्रेडिट लेने के लिए नहीं, क्योंकि हमें उनके चरित्र से कुछ नहीं सीखना, ये हमारा प्राण है, ये इंडिविजुअल प्रॉमिस है, ये हमारा सोशल प्रॉमिस है, ये हमारा रिलीजियस प्रॉमिस है। हमें अपने महापुरुषों से कुछ नहीं सीखना सिवाय उनकी मूर्ति बना के पूजने की। हमें तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना है, शाम को प्याला टकरा करके, सुबह कोर्ट में लड़ाई करके, मंदिर में प्रसाद चढ़ा के, और जब मौका मिले तो खूब हनुमान चालीसा पाठ करके। वो वाल्मीकि ने इसीलिए नहीं लिखा था, वाल्मीकि को पता होता तो कि लोग ऐसा करने वाले तो शायद रामायण ऐसा नहीं लिखते हो। तो ये राम का चरित्र था जो अपने भाई के साथ इस बात की डिबेट होता है कि राज्य किसका है। देवियों सज्जनों, सुमंत जो राम का मंत्री है, दशरथ का मंत्री है, जब भी राम को राज्याभिषेक का निमंत्रण मिला दशरथ से कि कल सुबह बताओ कि कल सुबह उसका राज्याभिषेक होगा, कोरोनेशन सेलिब्रेशन ऑफ कोरोनेशन होगा कि वो युवराज बनेगा, इसका सेलिब्रेशन होगा, उसको इन्फॉर्म करो, वो नाद होकर के तैयार रहे, रात से उपवास रखे, कल सुबह उसका युवराज बनने की घोषणा होनी है। सुमंत गया था घोषणा का सुनाने के लिए। अगले दिन जब उसी दिन रात को, आधी रात को, जब कैकेयी और दशरथ के बीच में ये बातचीत हुई, सुमंत ही गया था सूचना देने के लिए कि कैकेयी ऐसी डिमांड करती है, आपको वो बुला रही है, वो आपसे बात करना चाहती है, क्योंकि दशरथ बेहोश पड़े हैं। राम को सुमंत लेकर आता है और सामने कैकेयी और राम की जो चर्चा होती है, कैकेयी कहती है कि कल सुबह ही तुम्हें जाना है जंगल 14 साल के लिए, पेड़ों के छाल पहन के रहना होगा 14 साल तक, जंगल के फल मूल खाना होगा, कोई रॉयल तो छोड़िए कोई ह्यूमन ट्रीटमेंट भी नहीं मिलने वाला है। तो सुमंत्र दोनों परिस्थिति में, दोनों सिचुएशन में राम को देखते देखा है तो वो बताते हैं, आहुतस्याभिषेकाय विश्रेष्टस्य वनाय च नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम नवनम गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। मैंने उस राम को वहां भी देखा था जब उसको ये इन्फॉर्म किया गया कि कल सुबह तुम्हें राजा बनना है। मैंने राम को तब भी देखा था जब उसको ये इन्फॉर्म किया गया कि तुम्हें कल 14 साल के लिए जंगल जाना है। मैंने उनके सकल में, दोनों सिचुएशन में कभी भी कोई विकार नहीं देखा था, कोई मुंह में सकल में कोई परिवर्तन नहीं देखा था। जब राजा बनने की सूचना मिली तब भी उनके मुंह में जो भाव था, तो ये राज्यपाट छोड़ करके 14 साल का जंगल जाना है, उनके मुंह में भी वही भाव था, किसी भी परिस्थिति में कोई भाव में बदलाव नहीं था। सुमंत्र बताते हैं कि ऐसे स्थितप्रज्ञ लोग जैसे मैंने कहा, आप या तो शास्त्र पढ़िए या महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, दोनों जगह से आपको आपके जीवन के बहुत सारे डिलेमा के समाधान मिल जाते हैं। गीता में आप पढ़ते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, योगी कैसा होता है, और आप पढ़ते हैं जो सुख में दुख में एक जैसा रहे, निंदा में प्रशंसा में एक जैसा रहे, हार में जीत में एक जैसा रहे, हर परिस्थिति में एक जैसा रहे, वही व्यक्ति योगी है, वही सन्यासी है, वही स्थित प्रज्ञ है। सुमंत्र बताते हैं कि राम को मैंने जब भी देखा, क्योंकि मेरा ही सौभाग्य था कि राम को सूचना देने में ही जाता था, और दोनों परिस्थिति में वो हमेशा मैंने उसको उसी रूप में देखा। दोनों सज्जनों, समय हो चुका है आज के इस शुभ वेला पर हम राम को और एक छोटी घटना करके बात को खत्म करता हूं। महाकवि भवभूति लिखते हैं राम के ऊपर, जब राम लंका से वापस आ चुके हैं, अयोध्या में राज करते हैं, और उनको अपने दूत से समाचार मिला कि उनके राज्य में कोई व्यक्ति, उसकी पत्नी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती है अपने पति के घर में होने पर भी। जो पति को पता चला, उसने पूछा, तुम ये गलत काम क्यों करती हो, तुम कुलटा हो, तुम घर में रहने लायक नहीं हो, तुम स्त्री बनने लायक नहीं हो। तो स्त्री जवाब देती है, अगर राम कुलटा सीता को घर में रख सकता है जो 14 साल तक दूसरे पुरुष के साथ रही, तो तुम कौन सा राम से बड़ा हो, ये क्यों नहीं कर सकती। राम को पता चला कि सीता के नाम पर प्रजाओं जो फायदा उठाने वाले लोग, हमेशा चोर जो बदमाश लोग होते हैं, वो हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ क्लू ढूंढ के अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, कि सीता के लंका में रहने को इश्यू बना के अगर लोग व्यभिचारी बन रहे हैं, तो मैं सीता को भी छोड़ने को तैयार हूं। वशिष्ठादि ऋषियों ने लांछन लगाया, ये पाप ये कलंक है, आज तक भी लोग लांछन लगाते हैं। पर राम कहते हैं, बड़े सुंदर बात कह के ही समाप्त करता हूं, कहते स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। मुझे अपनी प्रजाओं के पालन करने में, मैं एक राजा हूं, प्रजाओं को सही रास्ते पर रखना मेरा काम है, और प्रजाओं की सेवा के लिए अगर मुझे अपना प्यार को बलिदान करना पड़े, मेरी दया को बलिदान देना पड़े, मेरी मित्रता को बलिदान देना पड़े, और तो छोड़िए, अगर मेरे सबसे प्राण प्रिय कोई है मेरी जानकी, उसको भी अगर त्यागना पड़े, मुझे कोई संकोच नहीं है छोड़ने में। राम बदनाम हुए, आज तक भी बदनाम हुए उन लोगों के द्वारा जो रियल लाइफ में, तो अंदर के लाइफ में कितने गंदे हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता, बाहर की लाइफ में बड़े मोरलिटी की बात करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बदनाम राम हुए, क्योंकि वो समझ नहीं सकते कि कम्युनिटी के लिए, एक ग्रेटर व्यू के लिए जो बलिदान होता है वो कितने सेक्रीफाइस होता है, वो कितना तकलीफ देह होता है। जिस समाज में नेता लोग, वो अमेरिका के हो या भारत के हो या अफ्रीका के हो, अपनी फायदे के लिए देश के साथ सौदा करते हैं, प्रजाओं के साथ धोखा करते हैं, उस समाज में ये समझना राम ने पत्नी को क्यों छोड़ा ये मुश्किल काम है। जिस समाज में पत्नी के लिए देश को बेचने को लोग तैयार बैठे मिलते हैं, जिस समाज में प्रजाओं के साथ धोखा करने को तैयार बैठे हैं पत्नी के लिए हीरे के हार लाने के लिए, उस समाज में ये समझ पाना मुश्किल है कि प्रजाओं के लिए एक राजा अपनी पत्नी को कैसे त्याग सकता है। नेचुरली ये सिचुएशन की बात है, माइंडसेट की बात है, आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि हमने जिंदगी में इस तरह के सैक्रिफाइस की नहीं या देखी नहीं है, ना कभी एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें वो बुरा लगता है। देवियों सज्जनों, महान पुरुषों का चरित्र अगर जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, और अगर सिर्फ हम उनके चित्रों की फंसे रह जाए तो जीवन हमारा वैसे मिट्टी के मिट्टी बना रहता है। इसीलिए स्वामी दयानंद कहते हैं, महान लोगों के चरित्र को सीखो, चरित्र की पूजा करो, न उनकी चित्र की पूजा करो, जिसको भी तुम जिस रूप में मानते हो, तुम उसको महान पुरुष मानते हो, भगवान मानते हो, ईश्वर मानते हो, जिस भी रूप में तुम जिसको जैसा भी मानते हो, उनके चरित्र से कुछ सीख लो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। उसकी पूजने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पूजने वाला तो जिसको पूजते हो तो तुम्हारे अंदर है, उसको ढूंढो, वो तो तुम्हें मोक्ष का कारण बनाएगा, तुम्हारे जीवन में सुख का कारण बनेगा। बाकी दुनिया में सबकी चरित्र से कुछ सीख सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज के इस रामनवमी के पर्व पर जो परसों हमने सेलिब्रेट किया, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में राम का वो चरित्र पैदा हो, राम के वो चरित्र उद्भूत हो, हम भी उसी के रास्ते पर थोड़े बहुत जाने को कोशिश कर सकते हैं। रिलेशनशिप के किसी भी पड़ाव कर, समाज और मेरे बीच के किसी भी पड़ाव पर, कहीं भी अगर राम का चरित्र हमें रास्ता दिखाने के सहायक बने तो राम का चरित्र भी धन्य है और हम भी धन्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।